राज धर्मराज, आप पूछते हैं तो मुझे बताने में क्या संकोच। मैं आपको यह सारा हाल कहकर सुना रहा हूं। पूर्व काल में ये सारी धरोहर दैत्यराज पृष्परवा की थी और इसमें अनेकों शस्त्र भी वहां रखवाए गए थे महाराज।
फिर क्या हुआ मैदानों, मुझे विस्तार से कुशल से बताओ बैंदानों। शिल्प कलाओं के विश्वकर्मा, वे समस्त शस्त्र हमें चाहिए विश्वकर्मा।
हे धर्मराज, मैं वह समस्त शस्त्र, विशाल गदा, गांडीव धनुष और देवदत्त शंख भी रखा हुआ हूं, जिसका नाद दूर दूर तक सुनाई देता है महाराज। साथ ही बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त करने को मैं बिंदुसार जाता हूं महाराज, और समस्त शस्त्र आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं।
जाओ मैदानों जाओ, और अब विलंब ना करो, अतिशीघ्र जाओ। कदाचित भी विलंब ना करो, अतिशीघ्र जाओ मैदानों, अतिशीघ्र जाओ।
युधिष्ठिर, मैं ये शंख वीर अर्जुन को दे रहा हूं, साथ ही मैं ये गांडीव धनुष भी अर्जुन को प्रदान करता हूं। महाराज, ये शंख जिसका नाद दूर दूर तक सुनाई देता है, और ये गांडीव धनुष जो शत्रु को परास्त करने वाला है। और महाराज, मैं ये विशाल गदा भीम को समर्पित करता हूं।
हे मैदानों, तुमने बहुत ही नेक काम किया है।
Oh,
महादेव ऋषि।
चिरंजीवी भव। अरे भाई, ये तो सभा भवन देखने योग्य है। धर्मराज, ऐसा सभा भवन जिसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, बलराम है तथा पांचों पांडव माता कुंती द्रौपदी सुभद्रा विराजमान है, भाई हमने और कहीं नहीं देखा। इंद्र चंद्र सूर्य इनके पास भी नहीं है। हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे पिता पांडु का संदेश भी लाया हूं। उन्हें तरण करने को तुम्हें राजसूय यज्ञ कराना होगा।
हे देवर्षि, यह सब प्रभु की कृपा और आपका आशीर्वाद है। मैं जरूर अपने पिता के आदेश का पालन करूंगा ब्रह्मर्षि।
युधिष्ठिर, और तो सब ठीक है, परंतु मगध का राजा जरासंध यज्ञ में बड़ा बाधक बनेगा। वो युद्ध किए बिना नहीं मानेगा। वह बड़ा क्रूर और हठी है, उसका वध करना ही होगा। आपको सर्वप्रथम जरासंध पर ही आक्रमण करना होगा, जिसके पास जितने राजा बंदी हैं सब समर्थक हो जाएंगे।
जो आज्ञा केशव, ऐसा ही होगा।
धर्मराज, तुम तनिक भी चिंता ना करो, उसका उपाय मैं बताता हूं। जरासंध की मृत्यु मल्ल युद्ध से होगी। वो मल्ल युद्ध में इतना निपुण नहीं है, हम उसे मल्ल युद्ध में मार डालेंगे। तुम मगध देश कूच करने की तैयारी करो।
जो आज्ञा केशव। अंबर में धूल कैसी उड़ रही है? ऐसा लगता है कोई शत्रु हम पर चढ़ाई करने आ रहा है। तुम शीघ्र जाओ, अति शीघ्र जाकर पता लगाओ कि आखिर यह है कौन, नगर में कितना उत्पात मचा रखा है इसने।
जी महाराज, अभी जाता हूं।
और मैं सूचना देता हूं।
महाराज की जय हो। महाराज श्री कृष्ण चंद्र और उनके साथ अतिथि आए हुए हैं,
उन्हें आने दो। आप लोग विश्राम कीजिए और मैं भी आराम करूंगा।
जैसी आपकी इच्छा, बाकी बातें बाद में होंगी।
महाराज महाराज, जो अतिथि आपके यहाँ ठहरे हैं वो कोई बहरूपिया लगते हैं। उन्होंने सारे नगर में हाहाकार मचा रखा है। आते ही कितना हाहाकार मचाया है आपको पता नहीं है।
क्या कहा, मैं अभी जाकर उन्हें सबक सिखाता हूं।
राजा जरासंध, क्या तुम मुझ पर शक करते हो? तुम्हें कुछ संदेह पैदा हो रहा है। अब तुम इतने वीर तो हो नहीं, ऐसे महाबली तो हो नहीं कि जो हम तुम्हारे यहां आए हैं तो तुमसे हम दब कर रहे।
हाँ हाँ, मुझे ये बात आते ही खटक गई थी कि तुम बिना कारण मगध देश में कैसे आगमन तुम्हारा हो गया और चारों ओर हाहाकार मचाया है।
दुष्ट भीम, मेरे को छल से मारने आए हो? यह सब तो इस छलिए कृष्ण की चाल है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
अरे बैरी, मैं आज तुझे समाप्त करके ही दम लूंगा। तू कितने भी उपाय कर आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता।
जिसका भयानक
से नहीं मारा जाएगा। भैया भीम, भैया भीम, इसकी टांगे पकड़ो। एक पैर पर पैर रखकर दूसरे पैर को बलपूर्वक खींचो और उठा के खींचो और जोर से खींचो, खींचो, चीर दो इसे।
क्या विचार है?
अरे ये बालक तो निर्दोष है। सहदेव, आज से तुम मगध देश के राजा बनोगे। बंदीजनों को छुड़वाया जाए।
जो आज्ञा प्रभु।
अर्जुन भैया और भीम भैया, विजय का सारा धन इंद्रप्रस्थ ले चलो। महाराज युधिष्ठिर, जरासंध का वध हो चुका है। अब जो भी कार्य करो विधि विधान से कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं द्वारिका जाऊंगा।
जैसी आपकी इच्छा मनमोहन, पर हां आते रहना ना भूलना।
भैया, भला ऐसा कभी हुआ है कि आप बुलावे और कृष्ण ना आवे?
अर्जुन, द्वारिकाधीश कृष्ण जी को बुलवाया जाए और रासु यज्ञ करने में विलंब ना किया जाए। किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। देवर्षि नारद मुनि के बताए अनुसार पिताजी की आत्मा की शांति के लिए हमें ये यज्ञ करवाना है।
आप ठीक कहते हो भैया, हमें शीघ्र ही कृष्ण को बुलाना चाहिए।
Oh,
हे श्याम सुंदर, हे मधुसूदन, इस यज्ञ को आप ही करें तो बड़ी कृपा होगी, बड़ी दया होगी हम पर। हे प्रभु, हमने जितने पाप किए हैं, हमें उन पापों से मुक्ति भी मिल जाएगी, और हमारी सफलता के लिए आपसे निवेदन है कि इतना कष्ट अवश्य करें प्रभु।
हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, अब आप सर्वगुण संपन्न हो, अब यज्ञ में विलंब ना करें, शीघ्र यज्ञ शुरू करवाएं।
आज तो इंद्रप्रस्थ की शोभा ही निराली है, क्या सजावट है, क्या सुंदर दृश्य है। भैया अर्जुन, सबका स्वागत श्रद्धा के साथ करना, किसी बात की किसी को कोई कमी न रह जाए।
जी भ्राता श्री, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी।
राजाओं के होते हुए कृष्ण की पूजा कभी नहीं होगी।
इतने बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे हुए हैं, ना जाने गंगा पुत्र भीष्म को क्या हो गया है, यूं देख रहे हैं यूं। करते हो, शांत हो जाओ गदाधर भीम, शांत होकर बैठ जाओ।
भैया ये कुष्ठ ज्यादा ही बोल रहा है, इसे मजा चखाने दो।
नहीं भीम नहीं, यह समय शांति का है, बैठ जाओ भीम बैठ जाओ।
जावे उसकी रही है मौत गधा, इस पर जाब कृष्ण ने दीना।
समय अच्छा है। भला देखूं तो इस सभा भवन की विशेषता क्या है, जरा मैं भी तो देखूं। द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगा। इसने मुझे अंधा कहकर मेरा अपमान किया था। श्री, मैं उन पांडवों को हस्तिनापुर की सीमा में नहीं देखना चाहता। उन्हें आप जुआ खेलने के लिए बुलवाइए। पिताश्री, उन्हें जुआ खेलने के लिए बुलवाइए।
बेटा, कैसी बातें करते हो? आखिर वो भी अपने ही खून है बेटा।
Peace.
खेलो खेलो, हार जीत तो होती रहती है। अरे जुआ खेलना तो राजाओं का काम है भैया। दुर्योधन, मुझसे ये जुआ खेलना नहीं आता, तुम क्यों हट कर रहे हो? अपने आप को दांव पर लगा दो, साथ ही इस बैल जैसे भाई भीम को भी दांव पर लगाओ।
खुद को दीना दाव लगाए, बची द्रौपदी अभी पास अरे अभी तो खेल में मजा है और असली कीमती चीज बाकी है। अब तुम द्रौपदी को भी दांव में लगा दो, शायद पासा पलट जाए।
बुजुर्गों के सामने दुर्योधन बड़ा अति कर रहा है, बताइए गुरु द्रोण।
हे भीम, यह तो अन्याय है, पर मैं क्या कहूं।
दुर्योधन, तेरे ये बड़े नीच कर्म है और इसमें तेरे बाप की भी सहमति है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अरे कपटी, फिर भी तू इन पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर सकता।
चुप रहो काकाश्री,
मित्र कर्ण, तुम जाओ और द्रौपदी को बुलाकर लाओ।
जो आज्ञा।
देखते हो दुशासन, जाओ और द्रौपदी को लेकर आओ, और यदि वो ना आए तो घसीटते हुए बलपूर्वक लेकर आओ।
जो आज्ञा भ्राता श्री। दुर्योधन ने तुझे बुलाया है, चल, नहीं तो तुझे बलपूर्वक घसीटते हुए ले जाऊंगा।
दुशासन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी मैंने स्नान भी नहीं किया, मैं भला गुरुजनों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगी?
अरे दासियों को क्या श्रृंगार करना, चल मेरे साथ।
¡Gracias! दुर्योधन वहां भी आए, केस खुले थे द्रौपदी के दब, उसको मौका मिल है यार पकड़ के लीना द्रौपदी के, दांत मीस बेरी मुस्काए चला घसीटत महल के बाहर, द्रौपदी चीख चीख चिल्लाए पल्लू लटक रहा धरती पर।
अरे दुष्ट छोड़ दे मुझे, कहां ले जा रहा है दुष्ट, छोड़ दे दुशासन,
चल,
तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ दे मेरे केश, मेरे केश पकड़कर मेरा अपमान कर रहा है तू।
अरे अब चल तू, अरे अब कहां की महारानी है तू, अब तू दासी है, दासी दासी दासी।
पल्लू लटक रहा धरती पर, आधे वस्त्र उतारे आए, कहे द्रौपदी दुष्ट छोड़ दे मुझको, आज कहां ले जा, एक ना मानी है बेरी ने, दशाना देखी वहां की जाए, देख द्रौपदी पांच पति मेरे बैठे नीचे मोह लटकाए, गुरुजन बैठे बोलत नैया, मुख से बोल निकलता ना, गरज सिंघनी सी कहे द्रौपदी। अब सभा बीच साड़ी खिंची जा रही,
सब तो
मेरा मुंह क्या देखता है? इस द्रौपदी के कपड़े उतार दो। इस दुष्ट द्रौपदी को मेरी जंघा पर निवस्त्र बैठाओ।
नीच दुर्योधन, जिस जंघा पर तू द्रौपदी को बैठाने को कह रहा है उसी जंघा को तोड़ूंगा मैं।
दुष्ट दुशासन, ये केश तेरे खून से धोकर बांधूंगी मैं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ
कि लाए जबरन मुझे खींच करके यहाँ, और अपने मन में भी देह सत बुखाए नहीं। क्या धनुषधारी अर्जुन भी कायर बने, आंख अबला की सन्मुख मिची जा रही। बारम
आचार्य बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे और कुछ नहीं बोलते, कृपाचार्य भी नहीं बोलते। मेरे पांचों पति दास बन चुके हैं। प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे परी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा है। प्रभु मेरी रक्षा करो।
तो सुन के अबला की बाड़ी श्री कृष्ण जी ओ द्वारिका से ही नंगे पैर आए प्रभु, रंग बिरंगी साड़ी की ढेरी लगी, कोर बोदल में अब खलबली मच गई।
वधू हो, दुर्योधन तुम्हारा देवर है, उसकी गलती माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। तुम जो कहो मैं वही करूंगा, ये मेरा आशीर्वाद है बेटी, आशीर्वाद।
की
युधिष्ठिर, इधर आओ बेटा। तुम तो बड़े धैर्य वाले महान पुरुष हो बेटा। इस दुष्ट आतताई दुर्योधन को अपना छोटा भाई समझकर माफ कर दो बेटे। और हाँ बहु द्रौपदी, तू मुझसे जो कुछ मांगे मैं दूंगा। मांग बेटी, मांग, मांग मुझसे।
आप मेरे ससुर समान हैं। मैं बस इतना मांगती हूँ कि मेरे होनहार संतान को दास पुत्र ना कहा जाए और मेरे पतियों को मुक्त किया जाए, उनका राजपाट उन्हें वापस किया जाए।
किए कराए पर पानी फेर दिया। यह आपने अच्छा नहीं किया पिताश्री। ये पांडवों को देश निकाला करना ही होगा पिताश्री, देश निकाला करना ही होगा।
बेटा दुर्योधन, तूने जो कर्म किए हैं वो अच्छे नहीं किए बेटा, बिल्कुल अच्छे नहीं किए।
अरे भांजे, दुर्योधन बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। तू जीजा जी को पुटिया ले बेटा।
पाट सब वापस
अपने खोटे कर्मों से बाज नहीं आएगा। तू कितना नीच है रे अधर्मी, ये अभी गंधारी भाभी को बतलाता हूं।
क्या बात है विदुर देवन?
भाभी, अब तुम अपने आतताई बेटे को संभालो। तुम्हारे इस बेटे ने कपटी शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्यूत कीड़ा में हराकर उन्हें अपना दास बनाया, और इतना ही नहीं, भरी सभा में इस कुल की वधू द्रौपदी को नग्न कर अपनी जंगा में बैठाने का आदेश देकर सारे हस्तिनापुर का अपमान किया है। भाभी,
क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो विदुर? यह कुलघाते पुत्र मेरी कोख से कहां से पैदा हुआ है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? भगवान तुम ही रास्ता दिखाओ। भगवान, अब मैं क्या करूं?
बेटा, तुम्हें एक बार फिर जुआ खेलना होगा। बेटा,
नहीं महाराज, नहीं, मैं जुआ नहीं खेलूंगा।
मुझसे
नहीं आता महाराज ये जुआ खेलना।
अरे खेलो खेलो भांजे, अरे अब तो तुम राजा हो राजा। अरे अब एक ही दांव में सब कुछ रख दो।
दिया उसका
रानी, अब कहाँ जा रही हो? अरे तेरे पति तो सब संपत्तिहीन हो गए हैं। अब कोई मनचाहा पति ढूंढ ले, बड़े ऐसे में जीवन नहीं कटेगा।
अरे नीच अधर्मी, तुझे इसका परिणाम जरूर भुगतना होगा। मैं कसम खाती हूँ, ये बाल खुले हुए तेरे खून से धोकर ही बांधे जाएंगे।
विदुर, तुम पांडवों को पहुंचाने गए थे ना, आखिर उनके वन जाने का उद्देश्य क्या है? वो क्या चाहते हैं विदुर, वो क्या चाहते हैं? हे भ्राता श्री, पांडवों का वो बड़ा करुणा भरा दृश्य था। धर्मराज ने आंखें बंद कर रखी थीं, भीम भुजाओं को देखते जा रहा था, अर्जुन धूल उड़ाते जा रहा था, नकुल ने कालख पोत रखी थी, सहदेव अपनी तलवार देखते हुए जा रहा था।